Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
और दो ही सत्ता हो जाती, प्रातिभासिक और पारमार्थिक। और प्रातिभासिक माने कुछ नहीं, और प्रातिभासिक जब कुछ नहीं है तो एक ही सत्ता एकमेवाद्वितीयम वह सिद्ध होगा। नहीं तो यदि व्यवहारिक सत्ता को स्वीकृति देते रहते हैं तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। कहा व्यवहार में तो महाराज संस्कार होते हैं, ये सब बात होती है, इसलिए व्यवहार में तो ऐसा ही चलेगा, व्यवहार में परमार्थ नहीं ला सकते, ऐसा भी कहते हैं। तो आपका अनुभव एक रस, विज्ञानैक रस जो भगवान भाष्यकार ने कहा था, वह एक रस अनुभव है और वह है ही। तो इसलिए इनका व्यवहार नहीं है पारमार्थिक सत्ता में, और उस परमार्थ के साथ ये जिस प्रमाण प्रमेय के व्यवहार को हम महत्व दे रहे हैं, इनका स्पर्श भी नहीं है। त्रिशुधाम सुयद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदैतद् उभयम् यस्तु सभुञ्जानो न लिप्यते। कारिकाकार ने कहा, भगवान कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी महाराज, तीनों त्रिशुधाम सुयद भोज्यम, तीनों धाम में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में जो भोग्य है, एक में स्थूल भोग है, एक में सूक्ष्म भोग में भोग है, और इसमें एक में आनंद का भोक्ता बनता है, आनंदमय कोष की प्रधानता है। तो कहा तीनों में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में जो भोक्ता और भोग्य बनता है, विश्व तेजस और प्राज्ञ बनता है, इन दोनों को जो जानने वाला है, वेद एतद उभयम यस्तु एतद वही तत्, जो इनको जानने वाला है वह भुंजानो न लिप्यते, वह भोग भोगते हुए भी लिप्त नहीं होता है। वो रोटी खाता है। एक उधर पूरब के महात्मा आते थे तो बोलते थे कि वेदांत के बड़े पक्की निष्ठा थी उनकी, पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, पर बड़े फक्कड़ थे, ऐसे घूमते थे, कभी दंड फेंक देते थे, कभी उनको पकड़ा दिया जाता। तो वो बोलते थे कि देखो, बोलते हैं कि तुम वेदांत का, वेदांत में तुम सबको मिथ्या मिथ्या कर देते हो, लेकिन टठिया भर भर के तो खा लेते हो, थाली भर के तो खाते हो, तो सब भुंजानो न लिप्यते हो, खाता हुआ भी नहीं खाता है, ये मौज की बात है। तो कहा कि वो नहीं खाता है। तो यदि प्रमेय जो वस्तु है उसका यथार्थ बोधकत्व और प्रमाण का प्रमाणत्व, जो प्रमेय प्रमाण प्रमेय का विचार कर रहे हैं, और प्रमाण का प्रमाणत्व, तो प्रमाण का जो विषयत्व विषय को प्रमाणित करता है, और प्रमेय का वही प्रमेय का प्रमेयत्व है, दोनों जाकर एक हो जाते हैं। अथवा ऐसे कहो कि प्रमाण का प्रमाणत्व क्या है, तो कहा कि वस्तु प्रमेय वस्तु का बोध कराना, और प्रमेय का प्रमेयत्व क्या है, कहा प्रमाण से सिद्ध होना। तो प्रमाण से अबाधित निसंदिग्ध सिद्ध होना, यह प्रमेय का प्रमेयत्व है, अर्थात दोनों की परिभाषा सापेक्षिक बनेगी। तो ये सापेक्ष सिद्ध पदार्थ हैं, और वेदांत जिस वस्तु का वर्णन करता है वह प्रमाण सापेक्ष नहीं है, है ना? तो वह प्रमाण सापेक्ष, इसलिए उसको अप्रमेय कहते हैं, और न ही वह प्रमेय सापेक्ष है। तो प्रमाण प्रमेय के व्यवहार से सापेक्ष वह नहीं है, किंतु ये प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार जिससे सिद्ध होता है वह आत्म तत्व, उसको यह वेदांत लिखाता है, तो उसको यहाँ निर्देशित किया जाता है। ये न अनुपश्यति, जिसके द्वारा आप प्रमाण का जो व्यवहार चल रहा है, प्रमेय का जो व्यवहार चल रहा है, दोनों सापेक्षिक रूप से जो खटपट खटपट किए जा रहे हैं, इन दोनों को देखने वाला, इन दोनों को सिद्ध करने वाला जो है, इनका अधिष्ठान है, स्वयं प्रकाश है, वह तत्व है, वह आत्म तत्व है, इसको इसकी बात बताएगी। तो यहाँ पर दो प्रश्न उठ जाते हैं। पूर्व पक्षी बड़ा बुद्धिमान है, भाष्यकार भगवान ने नहीं लिया, हम और कहीं से आपको सुना दे। तो कहा कि दो प्रश्न उठ जाते हैं। तो क्या प्रश्न उठ जाते हैं कि कहा कि यदि प्रमाण प्रमेय के व्यवहार का को वेदांत ऐसे ही उठा के फेंक देता है तो पहले इसका विचार क्यों करता है, क्यों इसके बखेड़े को हमारे सिर पर डालता है? तो प्रमाण प्रमेय का ये जो बखेड़ा है, ये इसने हमारी बुद्धि में क्यों डाला, ये वेदांत ने, ये वेदांत के ऊपर एक आक्षेप है। दूसरी बात कहा कि इन दोनों को सिद्ध करने वाला वाली कोई तीसरी वस्तु सिद्ध होगी, कि इन दोनों को सिद्ध, येन रूपम रसम गंधम, और यहाँ पर कहा येन अनुपश्यति, तो जो पीछे रहकर देखता है, अनुपश्यति पीछे रहकर जो देखता है, तो वह जो देखने वाला है, तो इनको सिद्ध करने के लिए आप कुछ और एक तीसरी वस्तु लाएंगे, आप श्रुति प्रमाण को लाएंगे, और श्रुति नेति नेति कहती है, ये भी हम जानते हैं कि श्रुति नेति नेति कहती है। तो इसका उत्तर दिया गया, कहा हाँ श्रुति प्रमाण हम लाते हैं, इसको समझना आप धैर्य से, क्योंकि बहुत जगह आपसे इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, पूछते ही चलते फिरते लोग, और तब आपकी बुद्धि आपका ज्ञान कुंठित नहीं होना चाहिए, इतनी स्पष्टता होनी चाहिए वेदांत के विचारक में। तो कहा कि श्रुति, तो श्रुति क्यों उसका वर्णन करती है, तो श्रुति प्रमाण से हम श्रुति को, श्रुति प्रमाण से हम नेति नेति को लेते हैं। तो कहा बस वही हमारा उत्तर है, जब हम ना इति, इति जो कहते हैं, तो इति से संपूर्ण व्यवहार, प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है, वह इति पद में आ जाता है, और श्रुति उसका बाध कर रही है, उस इति पद का नेति नेति के द्वारा उसका बाध कर रही है। तो दो बार नेति कहते हैं, तो प्रथम जो नेति कहते हैं उसमें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, जीव जगत और ईश्वर, इसका जो प्रमेय जाल फैला हुआ है उसके बिना हम रहते नहीं, या जागृत को देखेंगे, या स्वप्न को देखेंगे, या अभाव को सुषुप्ति को देखेंगे, तो यह एक प्रमेय जाल फैला हुआ है। और बुद्धि से विचार करेंगे तो ईश्वर का, जीव का, जगत का, ऐसे ही किसी का विचार करेंगे, बुद्धि जब तक बनी रहेगी तो इनका ही विचार करेगी, तो इसको बोलते हैं एक प्रमेय जाल। तो यह जो प्रमेय जाल फैला हुआ है, इसका निषेध श्रुति भगवती कहती है प्रथम नीति के द्वारा, न इति। और दूसरा जो नीति है, तो दूसरे नीति के द्वारा जो प्रमाण का विस्तार है आपकी बुद्धि में, तो क्या प्रमाण है, कहा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐसा हमारे छह प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष, प्रमाण, उपमान और अनुपलब्धि, अर्थापत्ति और शब्द प्रमाण, और उतना ही नहीं, उसका भी निषेध करती है श्रुति, स्वयं अपना निषेध करती है, और इतना ही नहीं, कोई ऐतिह्य प्रमाण मानते हैं, इतिहास के वेत्ता जो है वो ऐतिह्य, इतिहास को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि जो घटना होके खत्म होती जा रही है उसमें कोई शूर हुए, कोई वीर हुए, तो उनकी भी कथा होनी चाहिए, तो कोई ऐतिह्य प्रमाण मानते हैं इतिहास को मानने वाले, नृत्य शास्त्र वाले चेष्टा को प्रमाण मानते हैं, वैसे भी हम लोग जीवन में कभी कुछ चेष्टा से ही लिखा देते हैं, तो चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं, ऐसे प्रमाणों का एक पूरा विस्तार खड़ा हो जाता है, लेकिन वह सब का सब कहा आपके व्यवहार के लिए है। उसकी इस परम सत्य को जानने में उसकी कोई गति नहीं है। तो प्रमाण प्रमेय का जो बखेड़ा है तो उसमें उसका भी निषेध करती है श्रुति नेति के द्वारा। तो वेदांत में उसका प्रमाण प्रमेय के निरूपण के लिए नहीं है, पर आपको किसका किसका निषेध करना है, कहाँ तक आपकी बुद्धि जाती है, इसलिए समस्त निरूपण या वर्णन आता है। ठीक है, तो अब इसमें से एक और बात निकलती है कि प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है तो व्यवहार मात्र के अत्यंता भाव के द्वारा उपलक्षित जो आत्मस्वरूप है, स्वप्नांतम जागृतांतम, अर्थात व्यवहार मात्र जो आपको देखता है, स्थूल व्यवहार, सूक्ष्म व्यवहार। बहुत से विचारक हमारे यहाँ, सभी विचारक पुराने, वो ऐसा स्वीकार करते हैं कि जागृत में भी जब आप सूक्ष्म वस्तुओं का विचार करते हैं या सूक्ष्म विषय को लेकर उलझते हैं या मनोराज्य करते हैं, भावनाओं में जाते हैं, वो स्वप्न है। तो स्वप्न वहां भी वो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार चलता रहता है। तो उनसे उसके अभाव से उपलक्षित जो आत्मस्वरूप है उसको यहाँ यथार्थ सत्य बताया जा रहा है। ये न अनुपश्यति महंतम विभुमात्मान, उसको यथार्थ सत्य बताया जा रहा है, वही परमार्थ है। क्योंकि महंतम कह रहे हैं और विभुम कह रहे हैं तो वही परमार्थ है। तो आत्मा प्रमाण प्रमेय की अपेक्षा से कोई अत्यंत विविक्त तीसरी वस्तु नहीं है, ये निषेध किया गया कि प्रमाण प्रमेय के व्यवहार से विविक्त कोई तीसरी वस्तु है क्या आत्मा, तो कहा कि नहीं, किंतु प्रमाण प्रमेय की जो संपूर्ण व्यावहारिक सत्ता है उसका वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण, भले विवर्ति लगा लेना लेकिन अभी विवर्ति मत लगाओ फिलहाल, क्योंकि यमराज नहीं लगा रहे, वो सीधे दे रहे। तो कहा कि उसका जो अभिन्न निमित्तो संपूर्ण जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है, स्थूल अथवा सूक्ष्म, जागृत में अथवा स्वप्न में अथवा सुषुप्ति में निषेधात्मक अभावात्मक, उस संपूर्ण व्यवहार का जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है उसको यहाँ ये न अनुपश्यति, उसका और उसका प्रकाशक है, उसका अधिष्ठान है, स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है, उसको यहाँ लखाया जा रहा है। तो व्यतिरेक की प्रक्रिया से नीति नीति कहते हैं और अन्वय दृष्टि से वही सब कुछ है। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, स एव वेदम सर्वम, ऐसे करके उसका निरूपण किया जाता है दोनों प्रकार से। तो उस प्रकार ऐसा नहीं, विचार करने की शैली यह नहीं होती है कि आप इस प्रकार से कहा, दोनों प्रकार से वर्णन करते हैं तो ऐसे कहें कि मिट्टी जो है वही घड़ा बनती है, एक ऐसे कहेगा और एक कहेगा जो घड़ा है वही मिट्टी है, तो बात थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। जो घड़ा है वही मिट्टी है, तो आप घड़े को वहां महत्व दे रहे हैं ना, तो इसलिए प्रक्रिया से क्रमशः समझना पड़ता है। कहा कि यहाँ तो बता ही दिया गया कि जागृत स्वप्न वही आत्मा है, नहीं, वह उसका प्रकाशक अधिष्ठान है और उस पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। तो कहा कि अज्ञान से जो अप्राप्त होता है वह पहले से ही प्राप्त होता है, ये न अनुपश्यति, यह जो आत्म तत्व है यह पहले से ही प्राप्त है, इसको प्राप्त नहीं करना का आज हम लोगों ने वेदांत में विचार किया और बैठ बैठ के ब्रह्म को बनाया। क्या बनाया? का आत्मा को ब्रह्म बनाया। तो ना आप आत्मा बना सकते हैं और ना आप ब्रह्म बना सकते हैं, जो आपकी कर्तापने की भ्रांति है कि मैं यह करता हूं मैं यह करता हूं, वह भ्रांति वहां बोलती रहती है, वो भ्रम बोलता है। आप बना नहीं सकते तो आप बना नहीं सकते। इसमें एक बात सुंदर विचार की है कि जो श्रुति प्रमाण है तो उसको आप क्यों मानते हैं, जब आप संपूर्ण प्रमाण, तो श्रुति स्वयं जब निषेध करती है प्रमाण प्रमेय का तो अपना भी निषेध करती है। ये प्रमाणत्व को समझना, श्रुति के प्रमाणत्व को। तो श्रुति प्रमाण है क्योंकि संपूर्ण प्रमाण प्रमेय संपूर्ण अनात्मा का निषेध करके और वो अपना भी निषेध करती, इसलिए कोटि मातृ समाहितकारिणी भगवती श्रुति, करोड़ों माता के समान। करोड़ों माता नहीं कर सकती, वो तो कहेंगी हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और अब तुम क्या कर रहे हो, कहा प्रेम विवाह कर रहे हो। क्यों प्रेम विवाह कर रहे हो, हम कहें वहां विवाह करो, ऐसा होता है ना। और जो भगवती श्रुति है वो बोलती है शुण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रः, तुम मेरे मस्तक में पांव रखकर और उस अमृतत्व को प्राप्त करो, तो उस अद्वितीयत्व को प्राप्त करो, मेरी अपेक्षा अब तुम्हें नहीं है, तो स्वयं अपना ही, तत्र वेदा वेदा भवन्ति, श्रुति अपना भी निषेध करती है। जब संपूर्ण प्रमाण प्रमेय का निषेध करती है तब, अब यदि कोई एक अतिशय बुद्धिमान आता है और कहता है कि हमें श्रुति प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही निषेध कर लेंगे, तो हम स्वयं निषेध कर लेंगे। कैसे करेंगे कि हम अपने अहम से निषेध कर लेंगे, अहम जो है वो आत्मा है और उससे हम निषेध कर लेंगे। तो आप जब निषेध करेंगे तो निषेधक जो अहम है वह जीवित रहेगा। श्रुति का अपौरुषेय प्रमाणत्व है, तो निषेधक जो अहम है वह तो जीवित ही रहेगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम स्वयं अपने आप निषेध कर लेंगे, तो अपने आप तो आप स्वयं केवल कर्ता बन के रह जाएंगे, इसलिए विभिन्न पंथ निकल आए, क्योंकि उस अपौरुषेय प्रमाण के सामने हमने अपने अहम को झुकाया नहीं, तो इसलिए विभिन्न मत विभिन्न पंथ ये निकल आए और कहा हम अनुभव की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं। एक बार हम आ रहे थे रामेश्वरम से ज्ञान सत्र करके, तो ट्रेन में कुछ सज्जन लोग थे, फौजी ऑफिसर लोग थे, तो वो कुछ आपस में सत्संग की बातें कर रहे हैं। अब हमें पकड़ लिया उन्होंने और कहा कि माताजी आप ये बताइए कि अनुभव ही सच्चा होता है, ज्यादा किताब विताब पढ़ने का बखेड़ा क्यों, इसको छोड़ देना चाहिए, अनुभव ही सच्चा होता है। उनकी सब बात में हम हाँ कहते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर आखिरी में हमने पूछा कि आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए आप लोग सत्संग करते हैं और आपके शहर में चार लोग आते हैं, एक आता है बोलता है हमारा ये अनुभव है, उसने कुछ नीला पीला प्रकाश बता दिया, दूसरा आता है उसने कोई कहा कोई ध्वनि विशेष होती है, ओम की ध्वनि या जो भी ध्वनि होती है, ओम तो हम लोग शास्त्रीय है हमारा, तो कहा कि किसी ने कुछ और बता दिया, तीसरे ने कुछ और बता दिया, सबने अपने अपने अनुभव का निरूपण किया और पृथक पृथक प्रकार से कहा और सबने कहा कि हमारा अनुभव प्रमाण। तब आप किसके अनुभव को प्रमाण मानेंगे? अब तो वो चकरा गए और इशारे में समझ गए, वो काफी चर्चा कर रहे थे वो लोग, तो इशारे में समझ गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो है। हमने कहा आपके पास कोई कसौटी है, कोई मेजरिंग स्केल है जिसके द्वारा आप समझेंगे कि कौन सा अनुभव प्रमाण है? तो बोले कि नहीं। तो हमने कहा आप अपनी बुद्धि को ही लगाएंगे तो बुद्धि तो स्वयं उस अनुभव को पकड़ नहीं पाती है, और अनुभव तो बुद्धि से भी परे है, इतना तो शायद आप समझते होंगे। और ये अनुभव बुद्धि से परे है, इसको शास्त्र ने बताया। बुद्धेरात्मा महान परः, तो कहा कि आपका अनुभव बुद्धि से परे है और आप यदि अपने परिच्छिन्न अहम को पकड़कर ही रखेंगे तो आप किस अनुभव को प्रमाण मानेंगे? आपको जो रुचिकर लगेगा उसको मानेंगे और आप जीवन हार जाएंगे। उन्होंने कहा हम लोग बिल्कुल समझ गए। हमने कहा आप याद रखना, शास्त्र प्रमाण है, वह अपौरुषेय प्रमाण है। तो यदि हम अपने आप स्वयं स्वयं जान लेंगे तो स्वयं क्या करेंगे, कहा कर्ता बनकर रह जाएंगे, अर्थात परिच्छिन्नता की निवृत्ति नहीं होगी, परिच्छिन्न अहम की निवृत्ति नहीं होगी। तो सच्चा परमार्थ तो तभी उपलब्ध होता है जब श्रुति के अनुसार नीति नीति करके आप वेदांत का विचार करते हैं। तो महानतम विभुमात्मानम, महान और विभु आत्मा को जानकर ये बुद्धिमान पुरुष यह धीर शोक नहीं करता है। तो इसमें महान और विभु जो कह रहे हैं उसके द्वारा ये बता रहे हैं कि वह आत्म तत्व, यह आत्म तत्व, वह नहीं यह आत्म तत्व, जिसको साक्षात अपरोक्ष करके और नचिकेता को यमराज लखा रहे हैं। तो कहते हैं कि यह आत्म तत्व, यह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अर्थात देशकृत परिच्छिन्नता, कालकृत परिच्छिन्नता, वस्तुकृत परिच्छिन्नता उसमें नहीं है, परिच्छेद सामान्य के अत्यंता भाव से उपलक्षित है और सजातीय विजातीय स्वगत भेद भी उसमें नहीं। तो ये भेद भी उसमें नहीं है, ऐसा वह परब्रह्म परमात्मा है जिसके द्वारा तुम जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को देख रहे हो, वह तुम अपरिच्छिन्न आत्मा हो। उस पर अपनी दृष्टि ले जाओ और ऐसा जो देखने वाला है बुद्धिमान पुरुष है, धीर है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञेय ही है जिसको जानना चाहिए, उसको उसने जान लिया है, वह जानता ही है। आप इस सत्य को जानते ही हैं। गुरु कोई वस्तु बनाकर आपको नहीं देते लेकिन केवल लखा देते हैं, दिखा देते हैं। वह परम तत्व, वह ज्ञात ही है किंतु हमने उसके टुकड़े किए हैं, विभाजन किया है। हम ज्ञाता बने, सामने ज्ञेय को रखा और ज्ञान के हमने तीन टुकड़े कर दिए, उसी एक ज्ञान के हमने तीन टुकड़े कर दिए। कर दिए क्या? नहीं किए, कर नहीं सकते आप। इसलिए तो प्रमाण प्रमेय की मिथ्यता को सिद्ध किया गया, उस पर हमने विचार किया कि वो कुछ है नहीं, एक दूसरे से सिद्ध हो रहा है, सापेक्षिक है, उसकी वस्तुता सत्ता नहीं है। और कहा कि त्रिगुण को हम ले लेते हैं तो तीन गुणों को हम लेते हैं तो उससे वो तीन गुणों का क्या है अर्थ, कि सत्व से कहा अंतःकरण बनता है जिसमें आपका प्रमाता बैठता है, जिसके साथ तादात्म्य करके आपका विशुद्ध चैतन्य प्रमाता बन रहा है। और जो प्रमेय वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उसमें प्रधानता तमोगुण की होती है। जब प्रक्रिया से समझाते हैं तो ऐसा आपको संक्षेप में बताते जाते हैं। तो कहा कि प्रमेय वस्तु में तमोगुण की प्रधानता होती है और आप में कहा सत्व गुण की प्रधानता होती है। और जब आप उस प्रमेय वस्तु को चाहने लगते हैं, स्थूल शरीर क्या है, यह तामसिक है, तमोगुण की प्रधानता से बना है, यह स्थूल द्रव्य जितना का जितना होता है उसमें तमस अंश की प्रधानता होती है। और अंतःकरण आपकी बुद्धि सूक्ष्म है और उसमें सत्वांश की प्रधानता होती है, सत्व ही होती है वह। तत्व ज्ञानी की बुद्धि शुद्ध सत्व उसे कहते हैं, अर्थात आत्मा का प्रतिबिंबन उसमें साक्षात अपरोक्ष जगमग जगमग होता रहता है, ऐसी वो शुद्ध सत्व है। लेकिन अब जब वो प्रमेय तो हम तामसिक वस्तु को देखने लगी और उसे चाहने लगी तो बीच में एक ग्रंथि बन गई। तो यह जो ग्रंथि बनी इसी को बोलते हैं रजोगुण। काम क्रोध आदि ये सब रजोगुण है, तो ये रजोगुण से ये पैदा हुई, या इनको रजोगुण ही कहो। तो ये जो तीन ग्रंथियां, ये जो तीन गुण विभाजित हो रहे हैं, तो तीन गुण जो विभाजित हो रहे हैं, आत्मा इन तीन गुणों से रहित है। तो त्रिगुण से रहित है तो फिर आपकी बुद्धि में आ जाएगा कि अब जब सत्व को मिटाएंगे, रज को मिटाएंगे, तमस को मिटाएंगे, तब हम आत्म तत्व बनेंगे। नहीं, वो त्रिगुण से रहित है अर्थात वह त्रिगुणातीत है। त्रिशुधाम सुयत भोज्यम भोक्ता, वह स्वयं आत्म तत्व ही विश्व बनता है, तेजस बनता है, प्राज्ञ बनता है। और ना वह विश्व है, ना तेजस है, ना प्राज्ञ है, वह तुरीय तत्व है। इनमें अनुस्यूत भी रहता है और इनसे परे भी है। तो आज इतना ही विचार करेंगे। तो वह महान महान है विभू, विभू है, आत्मा है, उसको जानकर वह शोक नहीं करता है। तो जानकर वह शोक नहीं करता अर्थात वह ज्ञात ज्ञेय वस्तु है, और जो केवल ज्ञान से प्राप्त होती है वह पहले से ही प्राप्त होती है वस्तु, और जो केवल अज्ञान से अप्राप्त होती है वह वास्तव में अप्राप्त नहीं होती है। तो वह परमात्मा मैं ही हूँ, साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति धीरो न शोचति। तो धीर शोक नहीं करता है, शोक नहीं करता है अर्थात काल का चिंतन नहीं करता है। शोक भूत की वृत्ति है और भविष्य वृत्ति भय है और वर्तमान का मोह है। तो इनसे वह निवृत्त हो जाता है, शोक से तीनों ले लेना उपलक्षित हो रहा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।